बोलो कृष्ण कन्हैया लाल मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपाकमहं वन्दे परमानंद माधवम् शानंद मानंद बने बसंतम् आनंद कंदम् हत पाप वृंदम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भज गोविंद गोविंद गोपाला
भज गोविंद गोविंद गोपाला
वृंदावन बिहारी लाल की नित्य की भांति सर्वप्रथम सामूहिक संकलन मंत्र का सभी लोग उच्चारण करेंगे। सभी लोग ओम तत्सद द्वैतस्य ब्रह्मणो अन्ही द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे
जम्बूदीपे
भारतवर्षे
भारतवर्षे
भरतखंडे
भरतखंडे
आर्यावर्तैक
आर्यावर्तैक
देशांतरगते
देशांतरगते
कीलकनाम संवत्सरे अमुक नामनो हम नाम का उच्चारण करें अमुक गोत्र उत्पन्नो हम गोत्र का नाम लीजिए और सभी लोग बोले अद्य मासाना
मासाना
उत्तमे मासे
उत्तमे मासे
मार्गशीर्ष मासे
मार्गशीर्ष मासे
कृष्ण पक्षे
कृष्ण पक्षे
अष्टम्यां तिथौ
अष्टम्यां तिथौ
गुरुवासरे
गुरुवासरे
महाराष्ट्र प्रांते
महाराष्ट्र प्रांते
मुंबई नगर्याम
मुंबई नगर्याम
श्री प्रेमपुरी आश्रमे
श्री प्रेमपुरी आश्रमे
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणार्थम
श्रवणार्थम
तृतीय दिवसे
दिवसे
प्रथम उपस्थितौ
उपस्थितौ
विनियोगः
विनियोगः
अनेन
अनेन
श्रीमद्भागवत सप्ताह
भागवत सप्ताह
श्रवणेन
श्रवणेन
माम
माम
धर्मः
धर्मः
अर्थः
अर्थः
कामः
कामः
मोक्षः
मोक्षः
फलानां
फलानां
प्राप्तिः
प्राप्तिः
अस्तु
अस्तु
एवं च
एवं च
अभीष्ट
अभीष्ट
फल
फल
सिद्धि
सिद्धि
भगवत कृपा
भगवत कृपा
अस्तु
अस्तु
श्री कृष्ण
श्री कृष्ण
परमात्मा देवता
परमात्मा देवता
प्रियंता
प्रियंता
इति जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदनंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के पावन पुनीत पादारविंद में तथा समस्त श्रीमद् भागवत सप्ताह के पावन अवसर पर आवाहित देव विग्रहों के पावन चरणों में सत्सत वंदन परम आदरणीय परम सिद्धे अनंत श्री विभूषित लीलालीन ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत सत वंदन श्री प्रेमपुरी आश्रम के समस्त हमारे कार्यकुशल सब कार्यों में सक्षम ट्रस्टीमंडल तथा श्रीमद् भागवत सप्ताह के मुख्य यजमान तथा श्री माधुरी बहन ढोलकिया परिवार तथा अन्य समस्त यजमान वृंद संगीतज्ञ वृंद आचार्य वृंद सिद्धामयी मंगलमयी माति शक्ति स्वरूपा माताओ एवं कृष्ण रस के रसिक हमारे प्रिय समस्त भक्त वृंद आज हम महात्म्य के सहित चतुर्थ दिवस में और कथा के रूप में तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप बड़े भाव और निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आई हुई जो दिव्य भगवान की कथाएं हैं उन्हें भाव और रस के सहित अवगाहन कर रहे हैं। कथाओं को जितना हम भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे उतना इनमें रस और आनंद की अनुभूति होगी। श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष परम जिज्ञासु परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। भाव और निष्ठा के सहित प्रेम और स्नेह की शहद गुरु वाक्यों को हृदयंगम करते हैं, रस की अनुभूति करते हैं, परम आनंद की उपलब्धि श्री परीक्षित महाराज को हो रही है। आप भी उसी प्रकार से भाव विभोर होकर के भगवान की दिव्य चरित्रों का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, जो भी कथाएं हैं, जो भी लीलाएं हैं, वो हमारे कल्याण के लिए हैं। श्रीमद् भागवत की लीला, श्रीमद् भागवत की कथा के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए ये किसी राजा रानी की कहानी है। स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है कि ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस संहितायाम ये परमहंसों की संहिता है, ये मुमुक्षुओं की संहिता है। उस आत्म तत्व में निमग्न होने की संहिता है, जो दुनिया से विरक्त हो चुका है, जिसके संसार की किसी पदार्थ में किसी प्रकार की कोई लिप्सा नहीं है, किसी प्रकार का लेश मात्र भी किसी पदार्थ में अभिनिवेश नहीं है, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज और योगिन्द्र मुनिन्द्र अमलात्मा परमहंस अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी कहीं भी किसी भी पदार्थ में वृत्ति ठहरती नहीं है, निरंतर सदा सर्वदा उस परम तत्व में समाहित रहते हैं, ऐसे इसके वक्ता हैं। आज के प्रसंग में भगवान सुखदेव अपने परम जिज्ञासु साधक को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं, आह्लादित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, निवेदन किया कि भगवान हम जानना चाहते हैं वह परम तत्व जो शिव है उसका क्या स्वरूप है, हमें कृपा करके बतलाने की कृपा करें। सुनना ध्यान से, शिव शब्द सिंह इष्टवने धातु से बना है। सिंह इष्टवने धातु से प्राणो शेरते इसमिन सत्सेवा किम नाम शिवा प्राणिनो शेरते इसमिन, जिसमें संपूर्ण जगत प्रपंच अखिल प्रपंच शेरते शयन करता है, जिसमें विलय हो जाता है, जिसमें लीन हो जाता है, उस तत्व को शिव कहते हैं। इतना वो परम व्यापक तत्व है जिसमें ये समस्त प्रपंच शयन करता है। विवेचन करते हैं प्राणो शेरते अस्मिन, जिसमें ये समस्त जगत लय हो जाता है, वही तो शिव है, वही तो शंकर है। समम करोति इति शंकरा किम नाम शंकरा, समम कल्याणम करोतु, जो कल्याण का करने वाला है, कल्याण को देने वाला है, जो कल्याण स्वरूप है, जिसका अवलोकन, जिसका दर्शन, कल्याण स्वरूप है, जिसका अवलोकन करके हृदय गदगद हो जाता है, ताप संताप जिसके मिट जाते हैं, ऐसा वो तत्व शिव है। श्री सुखदेव जी महाराज विवेचन करते हैं, शिव वह परम तत्व है, शिव वह निर्गुण तत्व है, शिव वह दिव्य तत्व है। शिव तत्व की बड़ी सुंदर विवेचना की है। शिव तत्व के संदर्भ में आप थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें। शिव ऐसा देव है, ऐसा देव है। आप सब देवों को देखो और फिर शिव को देखो। शिव में कई विरोधाभास हैं, कई विरोधाभास। ध्यान से चिंतन करके देखो, कभी कभी भगवान के स्वरूप में लीन हो जाया करो, उसमें विलय हो जाया करो, फिर साक्षी बन के वहां झांका करो, अवलोकन किया करो। जिस प्रकार से आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने बालक को गोद में लेते हो और गोद में लेकर के कभी उसके कपोल को देखते हो, कभी उसके नेत्र को देखते हो, कभी उसकी नासिका को देखते हो, और नासिका कपोल आदि अवयवों को देख करके आप कितने आह्लादित होते, प्रसन्न होते हैं। ठीक ऐसे ही कभी कभी ये भी अनुभूति करो जो परम तत्व है, जो शिव है, जो सच्चिदानंद है, वो कृष्ण है, कभी उसकी भी झांकी का अवलोकन किया करो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित वह परम तत्व परम आनंद स्वरूप है। ध्यान से देखो, भगवान शंकर में तमाम अनेक अनेक विरोधाभास है। देखिए विवेचन कर रहे हैं, बोले यस्यांके यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तकी भाली बाल विदुर गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणासुरबरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिवा श्री शंकरा पातु मां यस्यांके यस्यांके च विभाति भूधर सुता यस्य अंके जिसके अंक में जिसकी गोद में भूधर सुता भू माने पृथ्वी पृथ्वी की पुत्री हिमांचल की पुत्री हिमालय की पुत्री यस्य अंके विभूषिता यस्य अंके जिसके अंक में जगत जननी मातेश्वरी परा अम्बा त्रिपुर सुंदरी मां पार्वती जिसके अंक में विराजमान है। दूसरा जिनके मस्तक में देवा पगा मस्तके मस्तके भाले ललाटे देवा पगा भगवती गंगा विराजमान है। ध्यान से देखना विरोधावास, सिर पर शिर पर गंगा है और गोद में पार्वती है। विरोधाभास है कि नहीं है? आराम से पार्वती भी रह रही हैं, पार्वती भी रह रही हैं और गंगा भी रह रही है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। जगत की दृष्टि से देखिए यशांके चिभात भूदर्शुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदु भाले भाल में बाल विदु चंद्रमा विदु चंद्रमा उनके भाल में विदु चंद्रमा है। चंद्रमा में अमृत होता है, क्या होता है वो अमृत भाल पर चंद्रमा में स्थित है और गले गले में क्या है जहर है गरलम गरलम गले में गरल है माथे पे अमृत है। ध्यान देना एक ही पात्र में ध्यान सुनना एक ही पात्र में अमृत भी हो और उसी में जहर हो उसी पात्र में अग्नि हो और उसी में जल हो। आपसे कहा जाए बाल्टी के अंदर जल भी डाल दो और अग्नि भी डाल दो पर अग्नि बुझनी नहीं चाहिए कर सकते हो पर यहां पर हो रहा है। उसी पात्र में उसी स्थान में अग्नि भी है और वही जल भी है। शंकर की जटाओं में जल है सुनना ध्यान से शंकर की जटाओं में जल है और तीसरा नेत्र अग्नि है। शिव में अग्नि भी है और जल भी है। भगवान शिव कहते दुनिया वालों ये संसार के लोगों तुमको संसार में रहना नहीं आता है। देखो हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में वित्त को प्रतिकूल परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। जल मेरे माथे पर है, मस्तिष्क पर है, और आग मेरी तृतीय नेत्र में है। आग भी है, वही आग है, वही जल है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। भगवान शंकर में इतने कितने विरोधाभास हैं। भगवान में मान सम्मान देखो, सम्मान कितना ऊंचा है। कैलाश पे रहते हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे पर कैलाश हैं, और एक दृष्टि में देखो तो शमशान बैठे हैं। जिसको कैलाश में बैठने पर कोई मान नहीं होता है और शमशान में जाने में अपमान नहीं होता है। शिव बोलते हैं, भगवान भोले कहते हैं, मेरी पूजा करने वाले लोगों, मान सम्मान दोनों को सम रखो। इस शिव के विरोधाभास देखो। शिव का चरित्र बड़ा विलक्षण है, शिव चरित्र बड़ा विलक्षण है। शिव के चरित्र को समझो तो आपको परिवार में बहुत अच्छा रहना आ जाएगा। फिर आप किसी द्वेष नहीं करोगे। भगवान बोलते हैं, थोड़े मेरे परिवार को झांको, मेरे शिवालय में आके एक बार देख लो। यदि एक बार तुमने मेरे शिवालय में आके देख लिया तो तुमको फिर घर में रहने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। भगवान बोलते, देखो मेरे शिवालय में आओ तो मेरे शिवालय के अंदर हमारा वाहन बैल है और मेरी देवी पार्वती का वाहन सिंह है। हमारे उस परिवार में वही सिंह रहता है और वही बैल रहता है। हमारे बेटे कार्तिक का वाहन मयूर है और मेरा आभूषण सर्प है। ध्यान देना, मोर सांप को खाता है पर वही मोर रह रहा है और वही सांप रह रहा है। हमारे प्रिय पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और वही मेरा आभूषण सांप रहता है। सांप चूहे को खाता है पर वही चूहा रह रहा है, वही पर सांप रह रहा है। भगवान शंकर ने सब हमारे परिवार में कितना ऐक्य है, कितनी एकता है, कितनी समन्वित भावना है। हमारे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है। भगवान शंकर बोलते, सभी के सभी एक ही शिवालय में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। पर विचार करो कि कभी भी कोई किसी को टेढ़ी निगाह से नहीं देखता है। यदि भी देखो तो सिंह बैल को खा जाता है। यदि भी चिंतन करो तो सांप चूहे को खा जाता है। विचार करो, चिंतन करो तो मोर सांप को गटक जाता है, निकल जाता है। लेकिन मेरे परिवार में सभी रह रहे हैं, कोई विरोध है? किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। आपके परिवार में, हमारे परिवार में विभिन्न वर्णों के हैं, विभिन्न जातियों के हैं, विभिन्न भावनाओं के हैं, फिर भी कितना साम्य है, फिर भी कितनी एकता है, फिर भी कितना प्यार है। अरे दुनिया वालों, एक मां बाप की संतानों की तुम झगड़ते हो, तुम लड़ते हो, आपस में कलह कलेश करते हो। भगवान शंकर ने कहा, मेरी पूजा करने वाले लोगों, हम पर जल तो तुम चढ़ा जाते हो, अक्षत भी चढ़ा देते हो, चावल भी चढ़ा देते हो, बिल पत्र भी चढ़ा देते हो, सब मेरी पूजा करके और मेरी आरती करके चले जाते हो, लेकिन मेरी पूजा को समझते नहीं हो। मेरी पूजा को एक बार पूजा करने में चूक हो जाए चलेगा, पर समझने में चूक हो तो नहीं चलेगा। समझने में चूक हो तो नहीं चलेगा। भले भूल जाओ पूजा करना, पर पूजा को समझना मत भूलना। भगवान शंकर कहते हैं कि पूजा बहुत करते हैं पर समझते बिल्कुल नहीं। समझते, समझो पूजा क्या है। अभी अभी शिवलिंग पर मेरे पे जल चढ़ा करके गए और घर में जाके पत्नी से झगड़ गए। क्या लाभ हुआ पूजा का? अरे पूजा का लाभ तो, मेरी पूजा का तो लाभ यह है कि तुम्हें प्रेम है, एकता है। एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान शिव का चरित्र हमको एकता को देता है। किसको देता है? एकता सिखाता है। तुम एक हो, और बिना एकता के आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो, आपकी इंद्रियां एक नहीं होंगी, इंद्रियों का समुच्चय नहीं होगा, साम्य नहीं होगा, तो आपको भगवत दर्शन नहीं होगा और आपके परिवार में ऐक्य नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐक्य प्रगति और उत्थान का प्रतीक है, भौतिक दृष्टि से देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखो तो भी ऐक्य बहुत आवश्यक है। जिंदगी में एकता लाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले बाबा बोले, अरे मेरे प्यारे भक्तों, हमारी पूजा से कुछ समझ लो, हमारी पूजा से समझ लोगे तो परिवार में आनंद हो जाएगा। शिवपुराण में बताया जा रहा है, यहां भागवत में बताया जा रहा है और रामायण में बताया जा रहा है, सर्वत्र ही चर्चा चर्चा चल रही है। और गीता के पन्ना को पलटो तो गीता में भी लिखा है कि सूत्रे मणिगणा एव, सूत्र भगवान कृष्ण ने बोला, अरे भाई ये मणिकाएं अलग अलग होती हैं लेकिन एक सूत्र ने बांधी हुई होती हैं। आपने ये मुझे माला पहनाई, ये अलग अलग फूल हैं। कैसे फूल हैं? अलग अलग हैं। जब ये फूल गुथ गए, जब ये फूल गुथ गए तो कितने सुंदर बन गए, गुथे हुए गुथित संग्रहित संकलित पुष्पों से सुंदरता बन जाती है, सौंदर्य आ जाता है। तो ग्रथित पुष्प सौंदर्य का प्रतीक है और बिखरा विघटित पुष्प कलेश का प्रतीक है। संगठित हो, समन्वित हो, जब जीवन में समन्वय आ जाता है, जीवन में संगठन आ जाता है, जीवन खिल जाता है, जीवन में सौंदर्य आ जाता है। चित्त की वृत्तियां, हमारी इंद्रियां जब संगठित हो जाती हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है, आंख कहीं जा रहा है, चित्त कहीं जा रहा है, आनंद नहीं आएगा। चित्त की वृत्तियों को, इंद्रियों को संग्रहित करें, आनंद आएगा। व्यवहारिक दृष्टि से परिवार के सभी सदस्य एक रहें तो परिवार में खुशहाली रहेगी, शांति आएगी। किसी भी स्तर से देखो, एकता बहुत आनंद देती है, बहुत आनंद देती है। विघटन नहीं, बिखराव नहीं। श्रीमद् भागवत सभी पक्षों की पुष्टि करती है, सभी पक्षों की पुष्टि करती है कि एक पक्ष नहीं, आध्यात्मिक पक्ष भी पुष्ट होता है, व्यवहारिक पक्ष भी पुष्ट होता है, पारिवारिक पक्ष भी पुष्ट होता है, आध्यात्मिक पक्ष भी पुष्ट होता है। भागवत में केवल एक पक्ष नहीं है, सर्वांगीण पक्षों पर चिंतन किया गया है, सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान देना। एकता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। जिस घर को आप झाड़ू से साफ करते हो, ध्यान देना, जिस घर को आप झाड़ू से साफ करते हो वो झाड़ू एक तंतु से, एक तार से, एक रस्सी से बंधी होती है। हमारे प्यारे बंधुओं, थोड़ा चिंतन करो, जो झाड़ी घर को साफ करती है एक तंतु धागा से, रस्सी से, तार से बंधी होती है, गंदी को साफ करती है। कदाचित तंतु टूट जाए, रस्सी टूट जाए, धागा टूट जाए, गंदी को साफ करने वाली झाड़ू खुद गंदगी बन जाती है, स्वयं गंदगी बन जाती है। गंदगी को दूर करने वाली, गंदगी को साफ करने वाली जो झाड़ू होती है वो स्वयं गंदगी बन गई। बोले क्यों बन गई? कि बिखराव हो गया है। समन्वित करने वाला जो तंतु है, धागा है, रस्सी है, वो टूट गई। जीवन में इंद्रियां बिखर गईं, आनंद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों का समन्वय
समन्वय होना बहुत आवश्यक है, समन्वित होना इंद्रियों का बहुत आवश्यक है, परिवार में सदस्य हैं उनका समन्वय होना बहुत आवश्यक है, संस्था में जितने जितने हमारे व्यवस्थापक हैं सभी का समन्वित होना बहुत आवश्यक है। संगठन का मतलब क्या होता है? समन्वय। संघ का मतलब क्या होता है? समन्वय। बौद्ध दर्शन को पढ़िए, बौद्ध दर्शन को पढ़िए तो बौद्ध दर्शन में पहला सूत्र आता है संघम शरणम गच्छामि। संघम समन्वय एकता, संघ की शरण में जाओ, संघ ही तुम्हारा जीवन है। इस संघ नहीं होगा तो आप विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। संघ बहुत जरूरी, एकता बहुत जरूरी, समन्वय बहुत जरूरी है। भगवान शंकर ने शिव चरित्र के माध्यम से बताया कि समन्वय बहुत जरूरी, संगठन बहुत जरूरी है। समन्वय नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है। ध्यान दो, बल दो, मस्तिष्क पर जोर दो और जोर दे के समझो कि समन्वय हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उत्कर्ष है, उत्थान है, प्रगति है। समन्वय नहीं तो हम विघटित हो जाएंगे, तो हमारा पतन हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। कई बार देखने में आता है, लगता है हम बहुत समन्वित हैं, हम बहुत संगठित हैं, हम एक हैं, एकजुट हैं, देखने में लगता है, लेकिन हम संगठित नहीं होते हैं। मौसमी को लीजिए, राजेश भाई, संतरा को लीजिए, ऊपर से संतरा, मौसमी, माल्टा एक लगता है, बिल्कुल एक लगता है, छिलके हटाइए तो बिखराव है, छिलका हटाइए तो बिखराव है, अनेकता है, अनेकत्व है, विघटन है। तरबूज को देखो, खरबूजा को देखो, तरबूज में धारियां, लकीर, धारियां पर धारियां होती हैं, देखने में लगता है अलग अलग है। तरबूज देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन तरबूज के ऊपर का छिलका हट जाए तो छिलका के हटते से अंदर एक होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, तरबूज का छिलका हटते ही अंदर से तरबूज एक होता है, और संतरा का छिलका हटते ही संतरा में अनेकत्व होता है। हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एकता संतरे की तरह है कि तरबूज की तरह है। कोई बोल सकता है कौन सी एकता अच्छी लग रही है, संतरे जैसी अच्छी लग रही है कि तरबूज जैसी अच्छी लग रही है? जिंदगी घर संतरे की तरह होना चाहिए कि तरबूज की तरह होना चाहिए? ध्यान देना, ध्यान देना कि कभी भी हमारा समन्वय, हमारी एकता संतरे की तरह नहीं होनी चाहिए। पर आज दुनिया में यही देखा जाता है, हम संतरे की तरह देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं लगता है इन जैसा प्रेम कहीं है ही नहीं, मेहमान आते हैं घर में परिवार में तो लगता है इन्हें बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, लेकिन मेहमान के जाते ही वो धमाल मचता है। गलत बात, अच्छी बात नहीं। हम संतरा नहीं बने, हम माल्टा नहीं बने, हम मौसमी नहीं बने। मौसमी, संतरा, माल्टा की तरह हमारी एकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी एकता तरबूज की तरह, खरबूजा की तरह होनी चाहिए। हम घरों से अलग हों वो चलेगा, सोने के कमरों से अलग हों वो चलेगा, खाने की थाली अलग हो चलेगा, चम्मच अलग हो चलेगा, रसोई भी अलग चलेगा और फैक्ट्री भी चलेगी। अलग फैक्ट्री हो कोई बात नहीं, ध्यान देना मेरी बात पर, रहने के घर अलग हो, कारोबार अलग हो, लेकिन विचार एक होने चाहिए पूरी परिवार के। यदि परिवार में विघटन आ गया, भाइयों में विघटन आ गया, हमारी कमेटी में, हमारे ट्रस्ट में, हमारे संगठन में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे नगर में, यदि विघटन आ गया तो विनष्ट होने में कोई देरी नहीं लगती। अरे अंग्रेजों ने आकर के भारत में क्या किया,
भारत में क्या किया? अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने सोचा इस भारत को गुलाम बनाने का यदि कोई तरीका है तो केवल विघटन है, इनको तोड़ो और फोड़ो, इनको विघटित करो और राज करो। अंग्रेजों ने यही तो किया, हमारे भारत देश में आकर के हमको विघटित किया, हमको तोड़ा और तोड़ मरोड़ करके फोड़ा और तोड़ मरोड़ करके फोड़ करके विघटन करके हम पर हुकूमत चलाई। ध्यान देना, बात को समझो, मैं तो बहुत दूर निकल गया, ये मस्तिष्क ही ऐसा है, क्या करूं, लौटाऊं तो अच्छा रहेगा। देशभक्ति पर चले गए, समाज पर चले गए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लौटाता हूं अपने को, समेटता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, आइए लौट के आइए, यथा स्थान पर आने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे मेरे परिवार को देखो, हमारे परिवार में सभी अलग अलग हैं। बैल को देखो, चूहे को देखो, सांप को देखो, मोर को देखो, हमारे शिवालय को देखो, सभी की वृत्तियां एक हैं, सभी का भोजन अलग है, सभी के दृष्टिकोण अलग हैं, लेकिन मेरे परिवार में वैषम्य होने पर भी यूनिटी है, एकता है, समन्वय, संगठन है। भगवान शंकर कहते मेरे शिवालय में भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब एक हैं। हमारी कमेटी में बहुत कार्यकर्ता होने पर भी विचारों से एक होते हैं। जब विचारों में एक है वही तो विजय है, वही व्यवस्था है, वही सब कुछ है। परिवार को चलाने के लिए भगवान कृष्ण ने कह दिया, सूत्रे मणिगणाए, ऐसा जीवन। बहुत सुंदर बात, भगवान शंकर ने इसके माध्यम से समन्वय संगठन की बात की। बोल वृंदावन बिहारी, ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक दृष्टि से भी संगठन जरूरी है, व्यवहारिक दृष्टि से भी संगठन जरूरी, एकता जरूरी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी एकता बहुत जरूरी है। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से आप देखें तो बिना समन्वय के, बिना एकता के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। भगवान भोले का बड़ा ही पवित्र चरित्र आप सुन रहे हैं, बड़ा ही शिक्षाप्रद भगवान शिव का चरित्र है। भोले कहते हैं, हमारे शंकर बतलाते हैं, दूषण को भूषण बनाओ, दूषण को शिव को आप सांगोपांग देखिए, शिव जी का आप दर्शन करें, सांगोपांग रूपेण आप जब दर्शन करेंगे भगवान शंकर का, तो भगवान शंकर के जीवन में सभी दूषण भूषण बन गए, सभी दूषण। ध्यान से देखें आप, शमशाने स्वाक्रीडा स्मर पिशाचा सहचरा, शमशाने स्वाक्रीडा, शमशाने शमशान को देखें, भगवान शमशान की विभूति को लिपेटते हैं। यद्यपि एक दृष्टि से चिंतन करो तो वो शमशान की विभूति कैसी है, दूषित है। अरे हम शमशान में जाते स्नान करते हैं, भगवान भोले ने कहा दुनिया वालों, दुनिया से प्रेम कर मत करो, ये दुनिया तुम्हारी नहीं, तुम्हारा मैं हूं। भोले ने कहा दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा तो मैं हूं, लेकिन तुम मुझको भूल जाते हो, दुनिया को याद करते हो जो तुम्हारी कभी नहीं बनी, कभी है नहीं, होगी नहीं, बनी नहीं, हुई नहीं और होगी नहीं, उसे तुम अपना मानते हो, और मैं तुम्हारा हमेशा से हूं, सदा से हूं, सर्वदा से हूं और आगे हमेशा रहूंगा, तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है और तुम मुझे भूल गए, दुनिया को तुमने पकड़ लिया। भगवान ने कहा दुनिया वाले अब तुझ जा रहा है, कंधे पे रखा हुआ तेरे को लोग जला फूक करके चले जाएंगे, अरे धन धरा के बीच में धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, ये सब कुछ संपत्ति यहीं पे रह जाएगी। अरे धना निभूमऊ धना निभूमऊ पशु भीष्ट गोष्ठे और नारी गृह द्वार जना संपाने देहश्चितायां परलोक मार्गे और धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहो।
ऐ मानव ये सब कुछ यही रह जाएगा, मुझे मत भूल, एक कंधों पे तुझे लेके जा रहे हैं, ध्यान देना, जला देंगे और फूंक करके चले जाएंगे, तेरे साथी नहीं बनेंगे। लेकिन मैं ऐसा हूं, जब तुझे सब छोड़ जाएंगे तब मैं ही आऊंगा, तेरी विभूति को लूंगा, सारे शरीर पे रमाऊंगा, अपने में तुझे आवेष्टित करूंगा, तुझे अपने में धारण कर लूंगा और तेरा जो मुंड होगा उसे अपने गले को सजाऊंगा, हड्डियों को सुधार करके अपने शरीर से चिपकाऊंगा। ध्यान देना, भोले की जैसा जगत में कोई नहीं हो सकता। भोले बाबा ने कहा कि सब छोड़ गए लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। भभूति ध्यान देना, मैं भगवान शंकर बोले दूषण भूषण बन जाते हैं। शंकर ने विभूति को लपेटा, मैंने ब्रज साहित्य में पढ़ा, ब्रज का साहित्य मैंने पढ़ा, बड़ी अच्छी वहां बात हुई, एक दबा देव सभा हुई, वो देव सभा के अंदर समस्त देव पधारे, भगवान भोले ने भूति को लपेटा हुआ है, डमरू बजाया है, तांडव नृत्य किया है, बहुत आनंद आया, ऐसी मस्ती आई। और जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो डमरू के बजाने से भगवान शंकर के तन पे लगी विभूति जब झड़के जमीन में गिरने लगी, उस विभूति को ब्रह्मा ने उठाया माथे पे लगाया, विष्णु ने उठाया नाल माथे पर लगाया, इंद्र कुमार वरुण सभी देवों ने उस विभूति को उठा करके मस्तिष्क पे लगाया। वो भूति किसकी थी, वो भस्म किसकी थी, वो विभूति आपकी थी, किसकी थी। देखो भगवान ने तुम्हें कहां तक, उस विभूति को विष्णु लगा रहे हैं, उस विभूति को ब्रह्मा लगा रहे हैं, इंद्र कुबेर वरुण लगा रहे हैं, अपने माथे पे धारण कर रहे हैं, कृतिकृत्य कर दिया। दूषण को भोले ने भूषण बना दिया, दूषण को भूषण बना दिया। भगवान शंकर ने कहा जहर सबको खराब लगता है लेकिन मैं जहर पी रहा हूं, और जहर को गले में भगवान शंकर ने धारण किया और उस जहर को भी भगवान ने क्या बना दिया, भूषण बना दिया। जहर पीने के बाद बोले, लोग बोलने लगे नीलकंठ भगवान की, जिसका कंठ नीला ऐसा बोला, नीलकंठ भगवान की जय। जो जहर को भी भूषण बना देता है, चिता भस्म को पवित्र बना देता है, जो स्वयं में पवित्र है, कुछ भी संस्पर्श करता सब पवित्र हो जाता है। तोतागिरी जी महाराज, जिसकी साधना ऊंची होती है, जिसका जीवन श्रेष्ठ और महान होता है, तोतापुरी जी महाराज परमहंस थे, बीतरागी विरागी अमलात्मा महात्मा थे, गंदी नाली का बहता हुआ जल तोतागिरी जी महाराज ऐसी उंजली में भरते थे, जब नाली में बहता हुआ जाता था तो उसमें कीड़े चलते थे, लेकिन जो तोतागिरी जी महाराज उस जल को यूं भरते थे तो निर्मल स्वच्छ जल हो जाता था। ध्यान देना, जल स्वच्छ हो जाता था, गंदा हो। एक योगी में इतनी शक्ति होती है कि जल को लेने से वो जल स्वच्छ हो जाता है, अपावन से अपावन को, दूषित से दूषित को, विकृत से विकृत को भी वह परमात्मा शुद्ध कर देता है। एक दृष्टि उसके लिए पर्याप्त है। दूषण को भूषण बनाने वाले भोलेनाथ हैं। एक और इससे शिक्षा लीजिए, यदि परिवार में कोई आदमी गलत है, भोले कह रहे हैं कि भाव आ रहा है कि क्या परिवार में कोई आदमी गलत है उसको निकाल देना चाहिए घर से, चलो दूर मत जाओ, ये तो परिवार की बात। आपके अंग में, आपके शरीर में कोई अंग खराब हो गया है काट के फेंक देना चाहिए। हाथ खराब हुआ उसे काटा, पैर खराब हुआ उसे काटा, अब कहां तक काटोगे? काटते काटते आप पूरे खत्म हो जाओगे। उसे काटो नहीं, उसे ठीक करो, उसको स्वस्थ करो, उसको अच्छा बनाओ। परिवार में कोई आदमी विकृत है, कोई बुराई, कोई दूषण उसमें आ गया है, कोई न्यूनता उसमें पैदा हो गई है, कोई खराबी पैदा हो गई है, उसको निकालो नहीं, उसको ठीक करो, अच्छा करो। भोले ने कहा कि कितने ऐसे विकृत जीव हैं, अरे मेरे बैल को देखिए, लोग बोल देते हैं। लोगों ने बोला हमने इस बैल को क्यों अपनाया? मुझे शिवपर्ण आ गया, मैं क्या करूं, मैं शिवपर्ण कथा बहुत अच्छी करता हूं। हमारे कार्य के पास आया होगा, अपन देखा होगा, सुरेश भाई देखा, गिरीश भाई, राजेश भाई, हम शिवपर्ण कथा भी बहुत अच्छी कहते, बह जाते हैं, जैसे भागवत कहता हूं ऐसे ही शिवपर्ण कहता हूं। ये नंदीश्वर क्या है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उधर नहीं जाऊंगा, रोकता हूं। शिवपर्ण में घुस गया तो पूरा टाइम उसी में जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान बोले बोले कि मेरे बैल को देख करके कुछ लोगों ने, मैंने इस बैल को अपना वाहन क्यों बनाया? अरे कई लोगों ने मेरे बैल को बोला, अरे कैसा बैल की तरह, कैसा बैल की तरह खड़ा हुआ है, कैसा बैल की तरह, कैसे बैल की तरह खा रहा है, अरे तूने मेरे इसको बैल को ऐसा बोला, चल मैं इसी बैल को अपना वाहन बनाता हूं, मैंने इसलिए बैल को वाहन बनाया। और तब से बोले जाने लगा बैल वाले बाबा की। भगवान ने जिसको अपना लिया, रामायण को देखें, थोड़ा रामायण को देखें, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम इमाशुतो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र बंदिते। एक चर्चा रामायण में भी आ रही है और किसी अन्य प्राण में आ रही है कि चंद्रमा को शाप मिला। कथा लंबी है। अहिल्या के हरण में चंद्रमा ने सहयोग दिया, शाप दिया ऋषि ने, जामित्र को शाप देता हूं तू सभी के तिरस्कृत होगा। चंद्रमा को निकाल दिया गया, कहीं उसका स्थान नहीं। तब भोले बाबा ने कहा तू रो मत, मैं तुझको उठा के अपने साथ तुझे अपनाऊंगा। उस कलंकित चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने माथे पे रखा। किसको रखा? कलंकित को। किसको रखा? कलंकित को भगवान ने अपने माथे पे रखा। देखो भगवान कितना दयालु है, कलंकित को, दूषित को, विकृत को भी भगवान अपनाते हैं। अच्छे कोई नहीं, अच्छे कोई नहीं, विकृत को भी भगवान अपनाते हैं। भोले बाबा ने ऐसे उस चंद्रमा को यहाँ रखा, बैल को वाहन बनाया। बहुत कुछ लंबी बात चली। दूषण को भूषण बनाते हैं भगवान। क्या बनाते हैं? दूषण को भूषण बनाते हैं भगवान। हम में इतने विकार नहीं है, कितने पाप, कितने विकार, कितनी बुराइयां। बड़ा अच्छा स्मृति वाक्य है, इथा अग्निना हेम मलम जहाती। जैसे सोने पे लगे हुए मैल को अग्नि जला के भस्म कर देती है, इसी प्रकार से परमात्मा का संस्पर्श, भगवान का नाम आदमी के जन्म जन्मांतरों को, पापों को ध्वस्त कर देता है। इतनी आप में पाप करने की शक्ति नहीं है, जिससे कई गुना अधिक उनके नाम में, उस परमात्मा में शक्ति और ताकत है तुम्हारे पापों को भस्म करने की। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मन से बजाओ। कोई भी काम करो दिल से करो, नहीं तो करो मत। मैं कथा दिल से कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, क्या समझे? कोई भी काम करो जिंदगी में, सफलता का राज है दिल से काम करो। ये दिल से काम नहीं करो, असफल रहोगे जिंदगी में, लड़खड़ा जाओगे जिंदगी में। हंसो तो दिल से हंसो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कई लोग काम चलाओ हंसते, नकली हंसते, दिखावे का हंसते हैं, वो दिखावे दिल से हंसो और दिल से हंसोगे खिलखिला के हंसोगे तो आपका रोम रोम हंस जाएगा, खिल जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएगी। हंसो तो दिल से हंसो, रो तो दिल से रो, क्या समझी, गाओ तो दिल से गाओ, ताली बजाओ तो दिल से बजाओ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया बातें तो बहुत हैं,
सुनो बड़े प्यार से सुनो,
अब बात चली रही तो सुन लो। हमारा भैया ग्रीस भैया बैठा है, कोई बात इसको देख के काम कर रहा हूं मैं, अब घड़ी नहीं देख रहा हूं।
एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं पंजाब में जाता हूं, अब यहां तो मैं ज्यादा घुमा घामा नहीं हूं, तो प्रायः मंदिरों पर लिखा होता है स्त्रियां शिवलिंग को ना छुएं।
यहां अच्छा लोग बोलते कि नहीं बोलते मुझे नहीं मालूम है,
कहते हैं स्त्रियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। यहां के लोगों की ऐसी भावना है कि नहीं है,
एक बात आपको बताऊं, पहले समझो शिवलिंग है क्या। शिवलिंग
लिंगम चिन्हम,
लिंगम चिन्हम, न्यायदर्शन को देखिए थोड़ा,
कणाद गौतम बौद्ध न्यायदर्शन में कहा गया है किम नाम लिंगम, बोले लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लीनम जो तत्व छिपा हुआ है, जो तत्व हमको दिख नहीं रहा ना, लीनम जो तत्व लय है, जो तत्व छिपा हुआ है, लीनम गमयति अवबोधयति, सुनना ध्यान से, अवबोधयति, जो छिपा हुआ तत्व है उस तत्व को जो दिखाता है उसका नाम है लिंग।
क्या नाम है
उसका, नाम क्या है,
लिंग,
सुनना ध्यान से, वही लिंग है। विपरीत अर्थ में कहीं नहीं चले जाना, लोगों को बोध होता नहीं है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है, कुछ कुछ कर जाते हैं, अधकचरा ज्ञान बड़ा समस्या खड़ा कर देता है। शास्त्रों का बोध नहीं है और शास्त्र की व्याख्या करने लगा तो गलत व्याख्या कर जाएगा। अध्ययन करो, पढ़ो, उसके बाद बोलो, उसके बाद व्याख्या करो, अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है। ध्यान से सुनना, लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग के बड़े अर्थ यहां पर बतलाए गए हैं। यहां कहा गया है कि सर्वलिंगमयी भूमि, सर्वलिंगमयी भूमि, सर्वलिंगमयम् जगत, लिंगम्यानि तीर्थानि सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम्। अरे ये जो संपूर्ण जगत है ये लिंग ही तो है, कैसे मने करते कि लिंग शिवलिंग की पूजा नहीं करो। सर्वलिंगमयी भूमि, आपने सृष्टि कल कथा सुनी, तो सृष्टि कथा मैंने कल बताया था अंडा, क्या बताया था, अंडा, अंडा कैसा होता है, ठीक शिवलिंग की तरह, ठीक शिवलिंग की तरह, उस अंड से ही तो सृष्टि बनी है, तो शिवलिंग रूप हुई कि नहीं। पृथ्वी का स्वरूप क्या है, लिंगमय है, सर्वलिंगमयी भूमि सर्वलिंगमयम जगत, तो जगत भी लिंगमय हुआ, लिंगमयानि तीर्थानि, ये सारे लिंग मही तो तीर्थ हैं, लिंगे सर्वम प्रतिष्ठितम, अब उस लिंग के अंदर जो रहता है वो सब लिंग ही तो हो गया। शिव शिव से भिन्न और शिव शिव लिंग से भिन्न कुछ जगत में है ही नहीं। शिवपुराण में लिखा है कि जब तुमको शिवलिंग कहीं नहीं मिले तो इस प्रकार से ऐसे,
अब शिवपुराण की व्याख्या है भागवत में कर रहा हूं, आप लोटे में जल भरिए और इस प्रकार से यहां पर चढ़ाइए और शिव की भावना कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। ऐसा सब कुछ लिंग में ही तो है, आगे कहते हैं लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम प्रकट इति लिंगम। लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम प्रच्छन्नम आच्छन्नम, प्रच्छन्नम आच्छन्नम, आच्छन्नम मन ढका हुआ आच्छन्न। न्याय में छन्न की बड़ा प्रयोग होता है। सम्माय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न है, ये न्याय है। क्या है ये न्याय दर्शन है। सम्माय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न। न्याय में अवच्छिन्न शब्द का बहुत प्रयोग आया है। लीनम प्रच्छन्न स्वरूपम प्रकटयति इति लिंगम। जो प्रच्छन्न स्वरूप है, जो ढका हुआ स्वरूप है, उसका नाम क्या है? लिंग। थोड़ा और देखें, न्याय में कहा है लिंगात लिंगयो ज्ञानम अनुमानम। लिंगात लिंगनो ज्ञानम, लिंग से लिंगनो ज्ञानम इति लिंगम अनुमान। सच्चिदानंद भगवान की मामला कठिन तो नहीं हो रहा है, है? हमारी बहन को तो बिल्कुल कठिन नहीं हो रहा है। सुनो ध्यान से, हमें कठिन भी बोलना आता है। आज हमारी भैया हर गिरीश से बात हो रही थी, गिरीश जी संस्था अपनी बहुत अच्छी है, हम दो बार कथा कर गए पर 16 साल पहले आई थी। सब मामला कुछ हमारे समय के बहुत से लोग तो आई नहीं, कई वृद्ध जन थे, कई दिखाई नहीं पड़ रहे। और हम अपने महाराज के साथ आते थे, पूर्णानंद जी महाराज के साथ, तो यहां बहुत समय आए महाराज जी। पूर्णानंद जी तो मैं बहुत बार आया, मैंने कहा अब नया नया हमारा आपका संबंध बना है तो ठीक है, आगे फिर सेवा करेंगे। गिरीश जी बोले महाराज हम भी चाहेंगे आप जरूर आए, और फिर आएंगे तब हम आपको जटिल और कठिन बातें खूब सुनाएंगे। हाँ, शास्त्र की बात बस यही सुनाएंगे, क्या समझे? यही शास्त्र सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, ब्रह्मसूत्र। ये मत समझना कि स्वामी जी को केवल यही आता है, स्वामी जी को ब्रह्मसूत्र भी आता है। ब्रह्मसूत्र चलाता हूं, हमने स्वाध्याय कराए हैं, काशकांत जी कांदी बल्ली में स्वाध्याय चलाया, घाटकूपर में स्वाध्याय चलाया, हम बहुत स्वाध्याय। स्वामी गणेशान जी महाराज हम पाबलवा आकर के महीनों महीने रुकते थे, हमारे इस बंबई में 6 महीना होते थे कथा के, कोई समय था। अब तो बन गए महामंडलेश्वर, दुनिया में बड़े चेले शिष्य बन गए, भगत बन गए, उस समय जाने पड़ता टाइम ही नहीं मिलता। साल दो साल में कभी एक बार बंबई आता हूं केवल दो चार दिन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं आप मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है कि संयोग बना है, अब हम आशा करेंगे आप भी इच्छा भगवान से प्रार्थना करो कि आगे कथा हमें वेदांत की भी सुनने को मिले। स्वामी जी से ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, हम तुमको वेदांत जरूर सुनाएंगे। और एक खास बात बताऊं कि कठिन जटिल बना के नहीं, कठिन बना के नहीं, सरल से सरल, सरल से। ये ब्रह्म विद्या बहुत सरल है, ब्रह्म विद्या बहुत सरल है, लेकिन उसका वक्तव्य करने वाला, सरल बनाने वाला होना चाहिए। कठिन बात बहुत सहज और सरल हो सकती है, कोई जरूरी उसको जटिल बनाओ, सरल भी बना सकते हैं। तो मौका जरूर आएगा, आइए लौट के आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो शिवलिंग, जैसे राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती, दुर्गा की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा, ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा हुआ करती थी। ये शिवलिंग कब से आया जी? ये शिवलिंग कब से आया? हमारे यहां केवल दो ही देव ऐसे हैं कि उन देवों की जगह पर चिन्ह की पूजा होती है। एक विष्णु जी हैं उनकी शालग्राम के रूप में, और एक शंकर जी हैं उनकी लिंग के रूप से। दो, कुल दो, तीसरा कोई नहीं। आप ध्यान देना, विष्णु की शालग्राम के रूप में, और वो कब से है? वो शिवपुराण की कथा है, शिवपुराण की कथा है। चलो छोड़ो, वृंदावन बिहारी लाल की क्या कथा सुनाऊं? ये दिमाग, यहां बैठता हूं तो दिमाग में इतनी बातें आ जाती हैं, तमाम शास्त्र नाचने लगते हैं। ये पकड़ूंगी, वो छोड़ूंगी, ये पकड़ूंगी, क्या कहूं क्या न कहूं, ये हालत मेरी हो जाती है। आइए उधर से हटा के इधर दिमाग को लगाओ, छोड़ो। ये लिंग की बात चल रही थी, लिंग पर सुनिए। ये लिंग क्या है? सुनो, लिंगम चिन्हम। ये चिन्हम चिन्ह कब से आया शिव की जगह पर? शिव की जगह पे चिन्ह कब से आया? एक कथा स्कंद पुराण की है, एक कथा लिंग पुराण की है। सुना शांति, लिंग पुराण की, शिव पुराण की, स्कंद पुराण की, और यहां थोड़ी थोड़ी भागवत में आ रही है। केवल स्पर्श किया है, ज्यादा नहीं है, केवल स्पर्श है भागवत में। ये कब से, कब से चर्चा आई है? आकाशम लिंगम मिथ्याहु, आकाशम लिंगम मिथ्याहु, पृथ्वी अस्य पीठिका, आलया सर्वदेवानाम लियानी लिंगम उच्यते। आकाशम लिंगम मिथ्याहु, ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में हम बड़े, हम बड़े। कथा का विस्तार है संक्षेप से। ब्रह्मा जी घूमते घामते आए, विष्णु के पास पहुंचे। अरे आपने मुझे नमस्कार नहीं किया, हम दुनिया के बाप हैं, तुम हमको प्रणाम करो। कौन बोले? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से विष्णु जी बोले, क्या बात करते हो? अरे तुमको तो मैंने पैदा किया है, तुम मेरे बेटा, तुम्हारे बाप तो मैं हूँ। आप मेरे बाप? बोले हाँ, मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे बेटा हो। ब्रह्मा बोलते, दुनिया बनाई है तो तुम मेरे बेटा हो, मैं आपका बाप हूँ, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। विष्णु बोलते, हम बड़े हैं। ब्रह्मा बोलते, हम बड़े हैं। अब बड़ा कौन है? ए बड़ा का बड़ा चक्कर है, बड़ा का दही बड़ा बोलते, हम बड़ा, मैं बड़ा। दही बड़ा बोलता, मैं बड़ा। और आलू बड़ा बोलता, मैं बड़ा। और लौकी बड़ा बोलता, मैं बड़ा। बड़ा कौन है? अरे भैया, बड़ा भाई जो सब लफड़ों से दूर खड़ा है, लफड़ों से वही बड़ा है। सुनना ध्यान से, सच्चिदानंद भगवान की बड़ी प्यारी सी बात। दोनों में संघर्ष होने लगा। भगवान विष्णु ने आकर के एक पुंज प्रकट किया, आकाश में लिंगम मिथ्याहु, पृथ्वी अस्य पीठिका, अस्य पीठिका पृथ्वी, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा तेज पुंज प्रकट किया। ब्रह्मा से कहा कि तुम हंस बनो, ऊपर पता लगाओ। विष्णु तुम बरहा बनो, जमीन में घुसो, पता लगाओ। जो सही पता लगा के देगा वही बड़ा। विष्णु जी पता करने गए, महाराज मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा पता करके करने गया, उसने सोचा पूजा तो मैंने खुद करानी है अपनी, बड़ा तो मैं ही बनूंगा। वो गाय को लिया, केतकी फूल को लिया, और सबको लेके गवाही दे दी आकर के। भगवान शंकर ने कहा ऐसा पुंज था? झूठ बोलता है। केतकी ने बोल दिया, गाय ने बोल दिया, सबने, शंकर ने आंख बंद की, अरे सब झूठ बोलते। तुरंत भगवान शंकर ने थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी की, उसे एकदम प्रकट हो गया एक गण जिसका नाम काल भैरव। भैरव ऐसे प्रकट हुए, और भैरव प्रकट हो गए। भैरव जी ने यूं ध्यान किया, लंबा नाखून हो गया, और लंबे नाखून को यूं चलाया ब्रह्मा की तरफ, गला कट गया। गला, गला क्यों कटा? गला इसलिए कटा, तूने झूठ बोला। ब्रह्मा के कितने थे, कितने मुख थे? अब कोई पांच कहता, कोई चार कहता, निर्णय करो ना कितने थे। चार, पांच, चलो जितने थे कई थे। भैया ध्यान देना, ब्रह्मा ने झूठ बोला, चार थे, चार थे, पांच थे, एक कट गया, फिर भी रह गए। और तुम्हारे पास कितने हैं? बोलते क्यों नहीं? एक है। अब एक है, तुम कितना झूठ बोलते हो? एक है और ए भी कहीं, क्या करोगे? इसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलते होंगे आप लोग, डर है ना आपको कि एक ए भी चला गया तो क्या होगा? अब बोला तो बोला, आज से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। आप तो समझ गए ना कि झूठ का परिणाम क्या होता है। भगवान ने कहा
शंकर बोले ब्रह्मा तो इसके लायक नहीं है, अब आशय विष्णु की पूजा होगी, जितने अवतार हैं वो विष्णु ही लेंगे, विष्णु ही लेंगे। ऐसा भगवान शंकर ने कहा और अपने जो लीला थी वो पुंज को मिटाने लगे, और पुंज को जब मिटाने लगे, फाल्गुन का महीना था, त्रियोदशी थी, मिटाते मिटाते इतना रह गया तो सारे देवता लोग बोले महाराज हम पे कृपा करो, इसको पूरा न मिटाओ, इसे मिटाओ मत, इसे रहने दो, इसकी हम पूजा करेंगे आपके स्वरूप में, ये आपका स्वरूप है, आपका चिन्ह माना जाएगा। उस दिन तेरस थी, तभी से शिवरात्रि शुरू हुई। क्या शुरू हुई? उसी दिन से शिवरात्रि शुरू हुई, और वही ज्योतिर्पुंज लिंग बना। क्या बना? और तब से ही शंकर की पूजा लिंग के रूप में आरंभ हो गई है, वही शिवलिंग कहलाया। आपने लिंग की कथा मैंने आपको बताई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव, हर हर महा, हर हर महादेव। सुनो भैया, कथा तो आज बड़ी लंबी हो गई। जय जय श्री राधे, भवेशील बताम गे हैं, भवेशील बताम श्रेष्ठ हैं, दक्षो द्वित्रिवशला, विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्यम आत्मजम सती। विदुर जी ने मैत्रेय से कहा भगवान कृपा करो हमें बतलाओ। परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव जी गुरुदेव मेरे मुझे बताओ क्या, भवेशील बताम श्रेष्ठ दक्षो द्वित्रिवत्सला, दक्षो द्वित्रिवत्सला दक्ष की पुत्री जो सती है, विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, कस्मात् विद्वेषम अकरोत्, उससे द्वेष क्यों करने लगा दक्ष, अनादृत्यम आत्मजाम सती, अपनी पुत्री की उसने अनादर क्यों किया, अनादृत्यम क्यों अनादर किया, क्यों द्वेष करता है, भवेशील बताम बड़ी शील वाली है, सौम्य है, सौम्य है, शील वाली है, फिर उसे कस्मात क्यों द्वेष किया है, प्रश्न किया सुखदेव जी ने, प्रश्न किया परीक्षित ने, प्रश्न किया इधर सौनक जी ने, प्रश्न किया इधर बिद्धु जी, प्रश्न कर रहे हैं अनेकों संवाद चल रहे हैं, सबने प्रश्न किए हैं, आपने भी प्रश्न किया, आपका भी प्रश्न है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान बतलाने की कृपा करो। उत्तर दे रहे हैं, बोले परम पावन त्रिवेणी संगम पर प्रयाग इलाहाबाद में बहुत अच्छा यज्ञ चल रहा है, समस्त प्रजापति आए हुए हैं, यज्ञ वहां पर चल रहा है, दक्ष उसके अध्यक्ष हैं, दक्ष की अध्यक्षता में यज्ञ चल रहा है, मुख्य हैं, सभी देवता लोग विराजमान हैं। दक्ष ने कहा जाओ देख के आओ सभा फूल ठीक से भरी है कि नहीं भरी है, आज लोगों में बीमारी हो गई है, वक्ताओं बीमारी हो गई है, जाओ देख के आओ सभा पूरी भरी कि नहीं भरी है। हम कई मंचों पे देखते हैं बड़े बड़े वक्ता जो होते हैं, बड़े बड़े लाखों वाले, लाखों भीड़ वाले, थोड़ी बहुत भीड़ हो तो वो जाते ही नहीं है। दर्शन का देख के आओ सारा हाल फुल है कि नहीं है, पंडाल पूरा फुल है कि नहीं, वो देखने गए। हाँ महाराज फुल है बिल्कुल, सभी लोग बैठे, चलो हम चलते हैं। और जब दक्ष आए सभा के मंडप में पहुंचे तो सभी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, वंदन किया। ठीक बात है, करना भी चाहिए, हम भी आते सब खड़े हो जाते हैं, हम भी आते तो सब खड़े हो जाते, ये कर्तव्य है। आचार्य आए, प्रवक्ता आए, व्यास आए तो उनका अभिवादन खड़े होके करो, अच्छी बात है, होना चाहिए, संयोग की बात। भगवान शंकर भी वहां बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, भगवान शंकर तो मस्त है, शिव की थोड़ी आंख बंद हो गई और अपने उस रूप में तन्मय हो गए, निमग्न हो गए भोलेनाथ। और जब भोले निमग्न हुए, तन्मय हुए, जान नहीं पाया कब दक्ष आया, और दक्ष ने देखा ये तो बैठा ही रहा, हमें पैर नहीं छुआ, मेरे को प्रणाम नहीं किया, और दक्ष ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। दक्ष ने बहुत अपशब्द भगवान शंकर को बोले, और शंकर बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, बड़े हर्षित, बहुत अच्छा बोलते हैं दक्ष महाराज।
क्या बात,
बड़ा सुंदर बोलते हैं दक्ष जी। और दक्ष जी को और गुस्सा आई और क्रोध आया।
ध्यान देना, दक्ष को गुस्सा बढ़ रही है, बहुत गुस्सा बहुत गुस्सा, अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखना, दक्ष अपशब्द बोल रहे हैं, दक्ष गाली दे रहे हैं, गण उनके बहुत कुछ कह रहे हैं। ये जो कोई किसी को अपशब्द बोलता है, बुरा बोलता है, गाली निकालता है, क्या उसने जो गाली निकाली, जो बुरा बोला, क्या उस तक पहुंचा? शंकर भगवान बोले, दक्ष तू जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है तू मुझे दे रहा है, तू मुझे गाली दे रहा है और मैं ले नहीं रहा हूं, तो वो किसके पास जाएगी? अरे फर्ज करो ना, मेरे हाथ में ये फूल है या तौलिया है, कुछ भी है, हाँ आप मेरे पास खड़े, मैं यूं कह रहा हूं लो, और आप हाथ नहीं कर रहे हैं, आप हाथ यूं नहीं कर रहे तो कहां रहेगी तौलिया? हमारे पास रहेगी। शंकर बोले, दक्ष तुम दे रहे हो और मैं ले नहीं रहा हूं, ये गाली कहां जाएगी, ये अपमान कहां जाएगा, ये तिरस्कार कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? ये तुम्हारे ही पास रहेगी। अच्छी वस्तु लो, ये गलत खराब वस्तु क्या लो? आप भी बनो, आप भी ऐसे ही बनो, आप भी ठीक ऐसे ही बनो, तुम दोगे हम लेंगे नहीं। भगवान शंकर ने कहा, दक्ष यदि कोई सूर पे थूके तो थूकने वाले का वो गंदगी कहां जाएगी? वो तो बहुत ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर है, वो गंदगी उसी के मुख पर गिरेगी। अरे दक्ष तू गंदी बातें कर रहा है, आक्रोश में बोल रहा है, गुल्ला गुस्सा में बहुत कुछ कह रहा है, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तेरा बीपी हाई हो रहा है, तेरा बीपी, तेरे को टेंशन बढ़ रही है, तेरा खून खौल रहा है, तेरे ओठ फड़कने लगे, तेरी आंखें लाल हो गई। शंकर बोले, अरे भाई मैं तो मस्त, मैं तो अरे मस्त राम जी मस्ती में, आग लगे घर बस्ती में, हमें क्या परवाह है, हम तो मस्त हैं, हम तो मस्त हैं, हम तो मस्त हैं, ऐसी मस्ती शंकर को है। शंकर ने कहा, भैया दक्ष तू नहीं बोल रहा है, भैया दक्ष तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा घमंड बोल रहा है, ये तेरा पद बोल रहा है। ध्यान रखना, कभी पद मिले, कभी धन मिले, कभी बल मिले, कभी यश मिले, तो कभी पद मिले तो पद का अहमान कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहां लिखा है कि भैया जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा शुकरी भिष्ठा, प्रतिष्ठा शुकरी भिष्ठा, शुकर के भिष्ठा की तरह प्रतिष्ठा होती है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का वचन है, प्रतिष्ठा शुकरी भिष्ठा, और शुकरी भिष्ठा तो बहुत निकृष्ट होती है, क्योंकि भिष्ठा खा करके शुकर की भिष्ठा बनती है। देखना, ध्यान देना, बड़ा शब्द बड़ा रहस्यात्मक है। शुकर जो भिष्ठा करता है, भिष्ठा को खा करके भिष्ठा करता है, शुकरी भिष्ठा प्रतिष्ठा शुकरी। अरे तू नहीं बोल रहा है, ये तेरा अहम बोल रहा है। ध्यान देना, तूने अहंकार की शराब पी रखी है। शंकर क्या बोले, तूने अहंकार की शराब पी रखी है, तो तू नहीं झूम रहा है और तू नहीं बोल रहा है, तेरी अहंकार की शराब बोल रही है। राजा हाथी पर बैठे जा रहे थे मस्ती से, सामने दो शराबी आए जा रहे थे, वो दोनों शराबी बोले राजा से, इस चूहे के कितने पैसे हैं, चूहे का क्या लेगा, इस तेरे चूहे की क्या कीमत है? राजा ने इशारा किया अपने सैनिकों को, पकड़ो लोगों, जेल में डाल दो। पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। सवेरे जब लगी सभा तो बुलाया उन दोनों को, बुलाया, अरे भाई चूहे का क्या देगा, चूहे की क्या कीमत देगा? वो दोनों बोले, महाराज लेने वाला चला गया। वो शराबी दोनों बोले, महाराज लेने वाला तो चला गया, जो लेने वाला था चूहे को, अब तो हम खड़े हैं, महाराज आप तो मेरे राजा हैं। महाराज अहंकार ऐसी शराब है, जब चढ़ जाती तो आदमी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सावधान सावधान, अहंकार मत आने दो। दक्ष ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। दक्ष उठकर के चले गए, नंदीश्वर ने श्राप दिया, दक्ष तेरे अंदर मैं अहम है, मैं श्राप देता हूं तेरा ये मैं जो है ना, ये तू जिस प्रकार से मैं करता है, चल अभी तो कम करता है, अब तेरे को मैं ही करना पड़ेगा, जब तक तू जिएगा श्राप देता हूं कि तेरे बकरे का सिर लग जाए। वो मैं करता है ना, मैं करता है। पूछा, हे पूछा, हे भृगु, तुमने इसका सहयोग किया, मैं तुमको भी श्राप देता हूं कि तुम्हारे दांत टूट जाएं। तुम दाढ़ी हिला हिला के बात कर रहे थे, ये तुम्हारी उखड़ जाए। बहुत कुछ बोला आपस में, सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, तुमने ऐसा बोला ऐसा बोला। शंकर चले गए कैलाश पर, सब भूल गए बातों को, बेकार की बातें कभी दिमाग में लिखनी चाहिए। शंकर ने कहा फजूल की बात है, हमारे भजन बाधा पड़ेगी, विघ्न पड़ेगा, और जो बातें रखने लायक नहीं है, जो बातों का कोई जीवन उपयोग नहीं है, हैं? कंप्यूटर की बटन दबा दो, डिलीट कर दो, रहेगा बार बार निगाह जाएगी, डिस्टर्ब होंगे बेकार, और बटन दबा दो और सब साफ कर दो। आपको डिलीट करना आता है कंप्यूटर में अथवा मोबाइल में अथवा कहीं पर, यहां क्यों नहीं आता है? यहां भी बटन दबाओ ना, भूल जाओ सब। शंकर ने बटन दबाई, सारा भुला दिया, सब निकाल दिया, बेकार की चीज है। कुछ शंकर बैठे थे कुछ दिनों में, अब इधर क्या होता है, सभी देवताओं ने सलाह की, उनके अनुयायियों ने कहा देखो ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ये शंकर को चाहिए था कि मैंने तुझे अपनी बेटी दी है, तू मेरे बेटे की तरह बना, तूने ध्यान नहीं दिया, हमको प्रणाम करना चाहिए था, कोई तूने मेरे को महत्व नहीं दिया, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। अरे दक्ष को डांटना था तो सभा के बीच में क्यों डांटा? तू जब बेटा मानता है, जमाई बेटा होता है, तो बेटे की तरह बात कर। आप ही शिक्षा लो, घर में जब किसी को कहना हो कुछ, डांटना हो कुछ, पत्नी चाय बना के लाई, चीनी ज्यादा पड़ गई, और तुम मेहमानों के सामने डांटने लगे, बरस पड़े मेहमानों के सामने, हे कुछ नहीं बनाई, बहुत चीनी डाल दी, ऐसा किया वैसा किया, तरीका है। उस समय आप सबके सामने ने बोलो, बाद में बोलो, लोग आए थे, ठीक से चाय पत्ती डालनी थी, ठीक से चीनी चीनी डालनी थी, सबके सामने नहीं, अकेले में कहो, सबके अंदर स्वाभिमान है, सबके अंदर स्वाभिमान है। सोचा दक्ष ने कि अब की इसको सबक सिखाना है, अब इसे कहीं पर किसी पूजा में भाग नहीं देना शंकर को। यज्ञ की तैयारी की गई, सभी को आमंत्रण बांट दिए गए, यज्ञ करो बहुत अच्छी बात है, हवन करो बहुत अच्छी बात है, शुभ काम करो बहुत अच्छी बात है, पर किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सदकर्म शुभ कर्म अपने आत्मकल्याण के लिए होता, उत्थान के लिए होता, न कि किसी को गिराने के लिए। दक्ष ने यज्ञ रखा, कहां रखा? कनखल में, हर द्वार में। कहां रखा? कनखल हर द्वार में। मैं कहां रहता हूं? कनखल में। कहां रहता हूं? हम कनखल में रहते हैं। हरिद्वार कहां है? बोले कनखल में है, और कनखल में मैं रहता हूं। हमारे बगल में ही राजा दक्ष ने यज्ञ रखा, शंकर को नीचा दिखाने के लिए। आमंत्रण पत्र छपाए, सभी देवताओं को बांट दिए, नीचे एक लिखा नोट, नोट जरा घूमते हुए कैलाश होके ही आए। देखो क्या प्रतिशोध है, जो भी ज्यादा पेट्रोल तेल लगेगा वो मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करना, पर आना कैलाश होकर के, पर आना कैलाश होकर के। शंकर को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा, ध्यान देना, अब जितने के जितने विमान जा रहे सब कैलाश होकर के, पर विमान के पीछे विमान, देवियां, उन देवताओं की देवियां बड़े सुंदर लोकगीत गा रही हैं। सती मैया
उमा भैया वहां बैठी हैं, माला फेर रही थी, शंकर जी भी माला फेर रहे थे, दोनों बैठ के जप कर रहे थे। माला फेरते फेरते एक विमान निकला, बड़े सुंदर गीत चल रहे थे, संगीत चल रहा था, देवियां गा रही थी। शंकर से पूछा ये कौन जा रहे हैं ऊपर, बड़े सुंदर गीत आ रहे, बोले देवी माला फेर रही ना, चुपचाप माला फेर नीचे चल करके आई, ऊपर मस्ताना को कर देना अपना, चुपचाप नीचे मस्ता रख अपना, ऊपर नहीं करना, नीचे मत्था करके जप करती रहे। और इतने अच्छे मल्हार आ रहे हैं, क्या सुंदर राग आ रहा है, यूं देखा अरे तो विमान जा रहे हैं, बड़ा सुंदर संगीत चल रहा है, ये कहां जा रहे हैं। शंकर ने कहा छोड़ने बात उन्हें नहीं बताना पड़ेगा, बोलो कहां जा रहे कहां जा रहे। जब शंकर ने बहुत कहा तो कहा तो जा रहे हैं तेरे बाप के यहां। कहां जा रहे हैं तेरे बाप, कहां जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं, सच बताओ, सच है कि तेरा बाप यज्ञ कर रहा है। तो भोलेनाथ आप भी चलो ना, आप भी चलो, कितना अच्छा होगा यज्ञ में चलेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप चलो ना। आपको शायद मालूम नहीं है, ये तो नारियों को देवियों को मालूम होता है, माताओं को मालूम होता है कि मायके में कितना सुख मिलता है, माँ से बात करने में कितना अच्छा लगता है, मासियों से मिलके कितना अच्छा लगता है। अरे आप तो भोलेनाथ हो, आप तो शंकर हो, आप तो त्रिगुणातीत हो, आपकी इन बातों से क्या मतलब है, लेकिन हम तो नारी है ना। हे भोलेनाथ आपकी प्रार्थना मेरे साथ चलो। शंकर ने कहा देखो देवी मैं चलता जरूर, मैं अभी तक आपको बात बताई नहीं, आज बता रहा हूं, ध्यान देना। ससुराल में जाओ कुछ शिक्षा लो भागवत से, ससुराल में जाओ कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो देवी को आकर के एक ही चार बता के सुनाओ, तेरे घर गया था ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ। शंकर ने कुछ भी नहीं सुनाया, चुपचाप रहे अभी तक। आज शंकर ने कहा देखो देवी मैं तुमको आज बता रहा हूँ, वो आपके पिताजी मिले थे तो ऐसे ऐसे भांजरा हमारी थोड़ी, उन्होंने हमको कुछ बोल लिया, मैं तो हंसता ही रहा, मैं कुछ बोला ही नहीं। इसलिए देवी उनके अंदर एक आक्रोश है, एक द्वेष है, उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। देवी तुम जाओगी तो अच्छा नहीं है। अरे आओ नहीं आदर नहीं और नैनो नहीं सने और तुलसी बहान जाइए चे कंचन वर्षे में हो। जहां सम्मान मान प्रतिष्ठा नहीं वहां कभी नहीं जाना चाहिए। देवी भगवान ने सती को बहुत समझाया, बहुत लंबी समझाने की प्रक्रिया है, समझाने के बाद भी माने नहीं। शंकर को सती को आक्रोश आया और गठरिया पटरिया बांधी चलने को तैयार। शंकर ने कहा वे जनी जाने ही जा ही रहे हो तो तरीके से जाओ, ध्यान देना। शंकर ने समझाया सती नहीं मानी। शंकर ने कहा दुनिया में दो को कोई नहीं समझा सकता है, दुनिया में दो को कोई नहीं समझा सकता है। कौन कौन? बोले एक पड़ोसी और दूसरी पत्नी। ये कभी समझने वाली नहीं। मेरी माताओं आप तो बहुत अच्छे हो, आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत मानना कि महाराज साहब हमारी तरफ इशारा कर रहे, आप तो विलक्षण देवियां हैं, हम आपको सच कह रहे हैं। हमने इतनी कथाएं की पर इस ढंग की शांति मुझे कहीं नहीं मिली। ये हमारे गायक बोलते हैं महाराज यहां आप बहुत मस्त हो जाते हो। मैंने कहा उसका कारण है कि यहां पर मुझे लगता है कि सब समाधिस्त बैठे हैं, कोई हलचल कोई अशांति किसी प्रकार की नहीं, इसीलिए मुझे उतनी मस्ती आती बोलने के लिए। शंकर साहब तो जाएंगे, ये जाने दो इनको। गणों को बुलाया, नंदी को तैयार कराया, सती को बैठाया, जाओ। अब वहां जाके देखा सब मामला विपरीत। पिता भी नाराज, बहुतों के अंदर द्वेष। शंकर भगवान की अब गई निगाह, अब निगाह चली गई, अब मैं खस करता हूं, मेरी बीमारी है। हम जितना चाहें उतना खींच सकते हैं और जितना चाहे समेट सकते हैं, अब मैं समेटने में लगा हूं। बोलो शंकर भगवान की, सुनना। अब शंकर, अब मैया पार्वती, मैया सती ने देखा यहाँ तो भोले का कोई स्थान ही नहीं है, सभी देवताओं का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र गंधर्व सभी का स्थान है, मेरे भोले का स्थान नहीं है। ध्यान रखना मेरी माताओं, मायके में जाओ, पीहर में जाओ, पीहर में जाने पर, मायके में जाने पर यदि ससुराल को कोई नीचा दिखाना चाहता हो तो उसमें मायके के बन के मत रहना, ससुराल के बन के बात करना, क्योंकि तुम्हारा घर ससुराल है न कि माया का, न कि मायका। तुम्हारी प्रतिष्ठा ससुराल से है मायके से नहीं, तुम्हारा नाम ससुराल से है मायके से नहीं। मायका का मतलब ही होता है मायक माने झूठा। मायक हमारे वेदांत में क्या बोलते हैं, बहन आपका क्या नाम है, उमा बहन, उमा बहन मायक माने झूठा, मायक माने, मायक माने झूठा, ये मायक है मिथ्या है। तो मायका के मतलब होता है मायक माने मिथ्या, जो मिथ्या है। ससुराल सच्ची है, मायका मिथ्या है, ध्यान देना। थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ करना चाहता था, कहूं तो कर दे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हमारी ससुराल वो परब्रह्म परमेश्वर है और ये दुनिया मायका है, हमारी दुनिया मायका है, ये संसार जहां पर हम रह रहे हैं ये मायका है, ससुराल हमारी आपकी सबकी वो ऊपर, ब्रह्म तत्वम शिव तत्वम वो तत्व ही हमारी ससुराल है, वो नहीं भूलना कभी। जो जीव जगत में आकर के ससुराल को भूल जाता है, मायकों को याद रखता है, वो भटक जाता है, वो भटक जाता है, ध्यान देना। मैं क्या बताऊं, मैं सब पक्षों को नहीं कह पा रहा हूं भागवत में। हाँ, हम चार पक्ष कहते हैं, अध्यात्म पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष। एक कथा के मैं चार पक्ष कहता हूं पर अभाव नहीं मिलता है, संक्षेप में अध्यात्म बताया। आगे बढ़िए, चति ने देखा कि भोले का स्थान नहीं है, शंकर ने कहा कि तो भोले, सती ने कहा ये तो ठीक बात नहीं है, सती को सहन नहीं हुआ और सती ने वहीं पर बैठ करके, संक्षेप में बैठ करके प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, उदान में समाहित करते हुए प्राणों को ब्रह्म रंध्र में ले गई और योग माया के माध्यम से शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। शिव को नारद जी के द्वारा पता लगा, एक जिताव खाड़ी जमीन पे मारी, वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र आते हैं, आकर के एक देव विध्वंस करते हैं, दक्ष का गला काट के अग्निकुंड में डाल देते हैं। संक्षेप अति संक्षेप, शिव आए हैं, सती के शरीर को लिया है, चक्र के द्वारा काटा है, 52 खंड हुए हैं, जहां जहां पर जो अंग गिरा है वहां वहां वो पीठ बना है, हमारे यहां 52 पीठ हैं, 52 जगह पर 52 पीठ बने, ऐसा यहां पर चर्चा आई है। दक्ष के गले को काट करके उसमें डाल दिया गया, प्रार्थना की गई, शिव को खुश किया गया, बकरे का सिर मंगाया गया, दक्ष को लगाया गया, दक्ष ने प्रार्थना की, बकरे के सिर आने पर अन्न विनय किया, पुनः फिर यज्ञ की गई, शंकर को प्रधान बनाया गया, उनको स्थान दिया गया, इस प्रकार के पर दोबारा यज्ञ होती है। ये आपको मैंने शिव चरित्र थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाया। बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, हर हर महादेव।
और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, 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 भोले बाबा से निराला को। कोई और नहीं,
भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले,
उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले,
अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले।
ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
पाप चमकते अगले पिछले,
पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले,
काया जब जब करवट बदली, पाप चमकते अगले पिछले,
पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले।
अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं,
अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
जय हो। मुझको स्वामी क्यों बिसराया,
मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया,
तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया,
मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया।
ऐसा भक्तों का रखे वाला कोई और और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। नष्टव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित् इति न्यायवर धर्मम् भेरी घोषेण सर्वसः। शुत जी महाराज विवेचन करते हैं, हे राजन से सुनो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अंग ने, सीधी बात करता हूं घड़ी की सुई को देखते हुए, राजा अंग ने अपने पुत्रों के कृतित्व को देखा, व्यवहार को देखा, अपने बेटे के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य परिवार को देखते होता है, परिवार का माहौल जब विकृत होता है तो माता पिता को क्षोभ होता है और क्षोभ में वो परिवार को छोड़ देते हैं। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन, ठीक इसी प्रकार से आज राजा अंग ने विचार किया, अब ये मेरा पुत्र नहीं है, कुपुत्र है, नालायक पुत्र है, अब इससे अच्छा है कि इसके सानिध्य में, इसके समीप में, इसके पास में इसके मुख को देखना अब ठीक नहीं है। हम दुनिया में आत्मकल्याण के लिए आए हैं, हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम बच्चे का संरक्षण संवर्धन करें, इनको श्रेष्ठ बनाएं, बनाने का बहुत प्रयास किया, अपनी तरफ से किसी भी शिक्षा को देने में मैंने कोई कमी नहीं की। ध्यान देना, अंग के इस कथन से, इस कथा से आप शिक्षा लो कि कई बार परिवार को बनाने का प्रयास करते हो लेकिन परिवार फिर भी संभलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रारब्ध समझते हुए, उनका भोग समझते हुए, उनके कर्म की प्रबलता समझते हुए अपनों को, अपने को अंतरंग कर लेना चाहिए और फिर अपने ढंग से अपना चिंतन, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया। राजा अंग रात्रि को घर से निकल करके परिवार को छोड़ के जंगल में गए, भगवान का भजन किया और मुक्ति को प्राप्त किया। इधर राजा बेन, अंग का पुत्र बेन गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठ के उसने घोषणा कर दी, घोषणा की, न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा किचित् कुचित् इति न्यायवर धर्मम न्याय भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी मुनादी करवा दी, पूरे देश में, नगर में डुग डुग्गी पिटवा दी, मुनादी करवा दी। क्या मुनादी कराई? न अष्टव्यम, कोई यजन नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, न अष्टव्यम और न दातव्यम, न कोई दान करेगा, न होतव्यम, न कोई हवन करेगा। इन कोई हवन, होम, हवन, दान, यज्ञ, पुण्य कर्म करता है उसको दंड दिया जाए। सुखदेव जी बोले, राजन, ऐसी इसने भेरी घोषणा मुनादी करवाई तो ऋषियों को अच्छा नहीं लगा, सभी ऋषि लोग आए, समझाया। ऋषियों का काम है समझाना, संतों का काम है समझाना, समझाया, समझा बुझा के वापस चले गए, लेकिन फिर भी अंग नहीं माना। ऋषियों ने कहा समझाने पर भी नहीं मानता तो बस एक ही तरीका है, इसे खत्म करो। सभी ऋषि लोग आए और आकर के ऐसी एक आवाज की सभी ऋषियों ने, यहां लिखा है, ध्वनि की। ध्यान देना, हमारे यहां सभी प्रकार के मंत्र हैं, हमारा मंत्र विज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है,
बहुत प्रबल है। ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो गई बहन की। उसकी पत्नी ने, सुनीता पत्नी ने, द्रोणी में तेल को भर के उसके शरीर को रख दिया। शरीर रखने के बाद ऋषि लोग कुछ अवधि के बाद आते हैं, भुजा का मंथन किया, निषाद प्रकट हुए। फिर पुनः एक भुजा से पृथ्वी को, दूसरी भुजा से देवी को प्रकट किया। अर्ची और पृथ्वी दोनों की शादी हो जाती है। राजा पृथ्वी बड़े धर्मात्मा है, श्रेष्ठ है। दुष्कर्म अनाचार पापाचार को देख करके पृथ्वी ने सारे अन्नों को, सामग्रियों को अपने में निगल लिया था। वो समस्त सामग्रियां राजा पृथ्वी ने उस धरती से बाहर निकलवाई और प्रजा का पोषण किया। राजा पृथ्वी बहुत महान थे, बहुत से यज्ञों को किया। इंद्र ने यज्ञों को देख करके उनका घोड़ा चुराया था, लेकिन बाद में उनकी इंद्र से मैत्री हो गई। उन्होंने समझाया, अरे मैं यज्ञ कोई इंद्र पद लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप मुझे द्वेष क्यों करते हैं। इंद्र और पृथ्वी की मैत्री हुई। बड़ा लंबा प्रसंग संक्षेप में मैंने कह दिया। इस प्रकार से पृथ्वी राजा अंत में अपनी आत्मगति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आगे चल करके राजा पुरंजन की चर्चा आती है, प्रचेताओं की चर्चा आती है। राजा पुरंजन घूमने जाता है, देवी को, किसी कन्या को देखता है, उसमें उसका मन लग जाता है। संक्षेप अति संक्षेप घड़ी खुशी देखते हुए, नवद्वारे पुरे देही नैव कुरन्वन नकारयन, नौ द्वारे वाली पुरी को देखा। बड़ी सुंदर भव्य पुरी है, कई उसे ओपन है, तालाब है, झरोखे हैं, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें हैं। उसको देख करके पुरंजन उस पर आसक्त हो जाता है और जो कन्या थी उसके साथ शादी कर लेता है। बहुत समय तक उसने वहां व्यतीत किया है। किसी राजा ने चढ़ाई की है, चढ़ाई के करने पर वो अपने को अकेला महसूस करता है और अंत में उसी स्त्री का चिंतन करते करते पुरंजन की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वो पुरंजनी नाम से दोबारा पैदा होता है। संक्षेप से मैंने यह भी कथा, बहुत लंबी थी, घंटों कथा थी, मैंने 5 मिनट में कही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इसे आप शिक्षा लें। सुनो ध्यान से, शिक्षा लो। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया था तो क्या बना, वही बना। चिंतन ठीक रखो। वृंदावन बिहारी लाल की, मैंने अति संक्षेप में ये पुरंजन का भी आख्यान आपको सुनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कथा आती है महर्षि ऋषभ की। ऋषभ देव बहुत उच्च कोटि के, उनके पिता ने यज्ञ किया। यज्ञ के करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। बरमरूही बर मांग लो। बोले महाराज क्या बर मांगू, चाहूं आप समान सुख, आपके जैसा बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विलक्षण चीज मांगी, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं। चलो मैं स्वयं ही आपका पुत्र आकर के बनूंगा। तो साक्षात भगवान विष्णु ही आकर के ऋषभ देव बने। ऋषभ देव को देख करके इंद्र को द्वेष हुआ। इंद्र सर्वत्र वर्षा किया, ऋषभ के क्षेत्र में, राज्य में वर्षा नहीं किया। ऋषभ देव ने अपने तप बल से मेघ तैयार किए, वर्षा की, प्रजा का पालन किया। ऐसे तपस्वी थे। यहां चर्चा आती, उनको शवपुत्र हुए। शवपुत्र होने के पश्चात उनको वैराग्य आया और वैराग्य आने पर, ऐसा वैराग्य आया और बैराग्य के आने पर घर परिवार को छोड़कर के वो चले जाते हैं। अवधूत का जीवन जीते हैं, परमहंस का जीवन जीते हैं। ये मैंने आपको ऋषभ की कथा सुनाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं घड़ी देख रहा हूं, किताब देख रहा हूं, अपने को देख रहा हूं, फिर आपको देख रहा हूं। आपको देख के तो लगता कथा कहते ही रहो, बंद नहीं करो। चलो कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कब? 10 बजे बंद करते हैं ना, 10 बजे करते हैं ना। सच में भूल जाता हूं कितने समय बंद करते हैं। सब पढ़ा 500 बार पर, इतना खो जाता हूं यहां पर। परसों तो मैंने बुलाया गिरीश को, मैंने कहा भाई गिरीश मैं भूल गया हूं कब कथा बंद करते हैं शाम को। बोले महाराज 7:30 करते हैं। मतलब इतना तन्मयता बन जाती है कि क्या कहां क्या, हमारी इति समापन कब है, कहने का तात्पर्य इतना प्रवाह में प्रवाहित हो जाता हूं। बहुत आनंद की बात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 5 मिनट इसी पे चर्चा कर लेते हैं, ऋषभदेव पर ही। दूसरी बात कहूंगा तो टाइम लगेगा। जय जय श्री राधे श्याम। ऋषभदेव का जीवन बहुत ही सात्विक, बहुत सहज, बहुत सरल, मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी पदार्थ में कोई मोह नहीं। रहते हैं जगत में, जगत की वस्तुएं, जगत के पदार्थ मात्र, उनमें इतना संबंध रखो, इतना मतलब रखो, निर्वाह पर्यंत निर्वाह की भावना रखो, अधिक नहीं। अधिक रखोगे तो दुख होगा, कष्ट होगा। निर्वाह का भाव रखो, निर्वाह की वृत्ति रखोगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ चलेगा। महाराष्ट्र के कोई 2 संत थे, पति पत्नी दंपति। पति ने सोचा, रास्ते में जा रहे थे, एक मोहर पड़ी थी, मोहर अशरफी। पति ने क्या किया, मिट्टी लेकर के ढांकना शुरू कर दिया कि कहीं मेरी पत्नी देख करके उठा न ले। पीछे से पत्नी आई, पत्नी देखा ही, पता नहीं क्या कर रहे। पत्नी ने बोला क्या कर रहे हो? पत्नी ने कहा कि माटी पे माटी चढ़ाओ। अरे माटी पे माटी चढ़ा और बहा रहे क्यों स्वेद, बतलाओ प्रिय मोहर और माटी में क्या भेद। अरे जिस माटी पर आप माटी डाल रहे हो और पसीने से लथपथ हो, परेशान महसूस हो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे जिस पे डाले वो भी माटी है, जो डाले वो भी माटी है। देखिए पत्नी का कितना ऊंचा आदर्श, पत्नी की कितनी ऊंची निष्ठा, धन संपत्ति में, सोने चांदी में कोई लगाव नहीं। सोना पहनना बुरा नहीं है, पर सोने को अंदर रखना बुरा है। अच्छा खाना बुरा नहीं, अच्छा देखना बुरा नहीं, अच्छा रहना बुरा नहीं, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना बुरा है। पतन का कारण आसक्ति है, उसके बीच में रहना नहीं। रहो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें बंधना नहीं है, पर उसमें बंधना नहीं है। ठीक ऐसा ही जीवन। पति ने उत्तर दिया, अरे धन्य तुम्हारा ज्ञान प्रिय, धन्य तुम्हारा ज्ञान प्रिय, जामे दोनों ये। आपका धन्य ज्ञान है और हमारे अंदर तो माटी और मोहर में भेद रहा, तो मैं समझता हूं आपका ज्ञान मेरे से उत्कृष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार की जिंदगी, ऐसा ही जीवन ऋषभदेव जी का था। ऋषभदेव जी का परिवार में रहते हुए,
घर में रहते हुए भी किसी पदार्थ में, राज्य का संचालन करते हुए भी किसी पदार्थ में कहीं पर आसक्ति नहीं थी। राजगद्दी पर बैठते थे, सोने का मुकुट धारण करते थे, राजे महाराजे के आगे पीछे सैनिक रहा करते थे। विपुल संपत्ति थी, विपुल वैभव था, लेकिन विपुल वैभव के होने पर भी उनके मन के अंदर किंचित भी कहीं पर लगाव नहीं था। ठीक हम भी इसी प्रकार से, ठीक इसी तरह से ऋषभ की तरह अपने जीवन को जिए। ऋषभ गृहस्थ थे, उनकी शव संतानें थी, यहां लिखा भागवत में उनकी शव संतानें थी। अरे भाई आपकी एक होंगी, दो होंगी, आ जाए तो पांच होंगी, चार होंगी, इसे तो नहीं हो सकती है। ऋषभ की शव संतानें थी और शव संतानों को जन्म देने के बाद ऋषभ किसी भी संतान में फंसे नहीं। जन्म देना मेरा दायित्व है, हमारे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है। अच्छा सोचो तो मेरा कर्तव्य, हम भी जन्म दे रहे हैं, हमारे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है, तो तुम्हारा भी दायित्व है कि तुम बच्चों को पढ़ाओ दिखाओ। तुम्हारे पिता ने तुमको मकान बना के दिया, तो अपने पुत्रों को मकान बना के दो, सब सुविधाओं दो। इसका मतलब फंसना नहीं, इसका मतलब फंसना। और तुम सोचते कि मैं बहुत अच्छा मकान बनाना जानते हैं, तो पक्षी आपसे अच्छा मकान बनाना जानते हैं। कई पक्षी ऐसे होते हैं, ऐसे अच्छे मकान बना देते हैं, जोंज बनाते हैं, वो चीर चीर के लाते हैं पत्तियां, और बड़ा सुंदर घोंसला बनाते हैं, इतना सुंदर निजस्त बनाते हैं, वो नींद घोंसला इतना अच्छा बनाते हैं कि शायद है आप प्रयास करने पर ऐसा न बना पाओ। तात्पर्य केवल यही निकला है, जो कुछ बनाना है, जो भी कुछ करना है, उस किए को मात्र केवल अपना दायित्व मानो, अपना कर्तव्य मानो, और कर्तव्य दायित्व जब मानोगे तो आप उसमें फंसोगे नहीं। और ना फंसना ही एक सूझ वाले व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। तो इस प्रकार से अपनी जिंदगी जियो, ऐसी आपकी जिंदगी होगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से दुनिया में जी सकते हैं, रह सकते हैं। आगे चर्चा भरत खंड की, एल खंड की, पलों की, घड़ियों की, दिनों की, महीनों की, वर्षों की, कल्पों की, चंद्रमा की, सूरज की, इनकी गतियों की चर्चा है, बहुत लंबी चौड़ी। ये भागवत तो जंगल है, क्या है भागवत? जंगल है। इस जंगल को पार करना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कल्प, यो, घड़ी वगैरह 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 बहुत लंबा चौड़ा श्रीमद् भागवत का विस्तार है। मैं आपको शनै 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 उधर ले जा रहा हूं। तो बड़ी सुंदर चर्चाएं इन्हें आप सुन रहे हैं। तो अपना जीवन आप ऋषभ की तरह बनाएं। जब आपका जीवन ऋषभ की तरह बन जाएगा, यहाँ भागवत में लिखा है कि ऋषभ जी महाराज, साधना देखो, ऋषभ जी महाराज पागल बन के रहते थे, पागल की तरह रहते थे, पागल के जैसी उनकी वृत्ति हो गई थी। भोजन कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। ऐसा भागवत में आया है कि ऋषभ जी महाराज ने सोचा कि हमको देख करके, हमारी सिद्धियों को देख करके लोग हमसे प्रभावित होते हैं, तो हमसे कोई प्रभावित न हो, इसलिए इस भागवत में चर्चा आ रही है कि ऋषभ देव जी महाराज कभी मल कर देते हैं, कहीं मूत्र कर देते हैं, कहीं भी मल मूत्र कर देते हैं, लेकिन जहां मल और मूत्र करते हैं, ऐसा सुखदेव जी विवेचन करते हैं कि हे परीक्षित, उस मल से, उस मल में दुर्गंध नहीं, सुगंधी सुरभि, उस मूत्र में दुर्गंध नहीं, उसमें सुगंधि, उसमें सुरभि। ऐसा योग दर्शन में भी चर्चा आई है। जब योगी आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से उस तत्व पर पहुंच जाता है, उस स्थल पर पहुंच जाता है, तो उसके शरीर से सुरभि निकलती है, सुगंधि निकलती है, खुशबू निकलती है, उसके पसीने से बदबू नहीं आती है, उसके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं आती है, उसका ऐसा जीवन बन जाता है। ऋषभ देव महाराज का ऐसा ही जीवन बन गया, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ, बड़ा महान जीवन ऋषभ देव जी महाराज का था। अंत में ऋषभ देव जी महाराज एक जंगल में जाते हैं, जंगल में, और जंगल में जाकर के वहीं समाधिस्थ हो जाते हैं, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं, और वहीं पर जंगल में आग लगती है, और आग के लगने से ऋषभ का वहीं पर शरीर का अंत हो जाता है। इस प्रकार से मैं ऋषभ का चरित्र आपको सुनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शेष चर्चाएं शाम की सभा में आपको सुनने को मिलेंगी।
शाम की कथा बहुत अच्छी, बहुत दिव्य। आइए अब यही वाणी को विराम, समय हो चुका है, घड़ी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे
राधे राधे। राधे कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब सहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद न तुमने कोई गौर ही किया, मेरी फरियाद न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को बीती बातों हो गई है। श्री जी के चरणों में आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है श्यामा।